हरे कृष्ण। तो आज 29 दिसंबर गुरुवार के दिन श्री उडुपी क्षेत्र में आप सबका स्वागत है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप में से बहुत लोग डॉक्टर हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के स्टाफ हैं और उनके परिवार के सदस्य हैं, और बहुत सारे लोग हमारे पूर्व मरीज हैं, मतलब पहले मरीज थे, अभी नहीं, अभी ठीक हो चुके हैं और आगे भी ठीक होना चाहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और बहुत सारे मेहमान और मित्रगण उपस्थित हैं। नर्तकी माता जी आई हैं क्या? हरग्रेस नर्तकी माता जी नहीं अब तक आए। तो ये जहाँ पर हम बैठे हैं ये उडुपी इस्कॉन का मंदिर है, और ये छोटा सा केंद्र है, सेंटर है, और हमारे बहुत सारे अच्छे भाग्य से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम आपको यात्रा के नियमों के बारे में बताएंगे, यात्रा में क्या भाव होना चाहिए। यात्रा जो है वो पिकनिक नहीं होती, पिकनिक में हम लोग अपने आप को केंद्र स्थान में रखते हैं, और खुद को कितना आनंद मिलेगा इस पर सारा चीज़ निर्भर रहता है। पिकनिक यानी आनंद खुद के लिए। हरे कृष्ण। लेकिन यात्रा, तीर्थ यात्रा का मतलब होता है भगवान को केंद्र स्थान में रखकर भगवान के लिए, उनकी सेवा के लिए और अपनी आत्मशुद्धि के लिए जो सफ़र हम करते हैं उसको यात्रा कहते हैं। और हम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने को नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने आए हैं। ज़रूर क्रिसमस की वेकेशन है, इसमें पिकनिक जाना चाहिए, लेकिन जब यात्रा सही भावना से होती है तो पिकनिक उसमें शामिल हो जाती है। कैसे? कि जैसे हम भगवान को केंद्र स्थान में रखकर भगवान को सेवा करना चाहेंगे, भगवान के विषय में जानना चाहेंगे, भगवान के विषय में अनुभूति करना चाहेंगे, रियलाइजेशन, तो जैसे ही भगवान से हम संपर्क करते हैं सेवा के भाव से, तुरंत अपने आप को, स्वयं को आनंद मिलता है, तो पिकनिक का पर्पज़ भी उसमें पूर्ण हो जाता है। लेकिन जब केवल खुद के आनंद का योजना बनाते हैं तो भगवान उसमें संतुष्ट होंगे कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सब अपने आप को भगवान के विषय में केंद्रित बनाकर रखें। जब तक आप भगवान को हृदय में केंद्र स्थान में रखकर चल रहे हैं, आप यात्रा में हैं। भगवान जब वहाँ से हट गए और आप खुद वहाँ पर आ गए तो आप पिकनिक में आ गए। और पिकनिक में हर समय हर जगह पर आनंद मिलता है ऐसी गारंटी नहीं होती। यात्रा में स्वेच्छा से हम लोग कुछ न कुछ असुविधाएं स्वीकार करते हैं। अरे हमारे घर में बहुत अच्छा डबल बेड है, एयर कंडीशन है, बड़े बड़े रूम्स हैं, यहाँ पर छोटे छोटे रूम्स हैं, बाल्टी से पानी आता है, कई सारी सुविधाएं वहाँ पर नहीं होती है जो घर पर होती है, यहाँ पर नहीं मिलती है। हम लोग स्वेच्छा से वो स्वीकार करते हैं। जो लोगों को केवल चपाती खाने की आदत है, यहाँ पर उनको चावल खाना पड़ेगा, वी डोंट नो। हाँ, साउथ इंडियन लोग बहुत प्रेम से हंस रहे हैं और महाराष्ट्रीय लोग सोच रहे कैसा होगा। उत्तर भारतीय लोग शायद रोते होंगे अभी सोचकर। लेकिन यात्रा का अर्थ यह है कि हम भगवान के लिए जा रहे हैं, और उसके लिए शरीर के लिए, मन के लिए कुछ असुविधाएँ होगी तो भी हम प्रेम से उसको जानबूझकर स्वीकार कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे अपने आप आध्यात्मिक उन्नति होगी। जब भगवान के लिए स्वेच्छा से हम कुछ असुविधाएं स्वीकार करते हैं तो उसको तपश्चर्या कहते हैं। तपश्चर्या की व्याख्या ये है, भगवान के लिए नंबर वन असुविधा, स्वेच्छा से जब स्वीकार करते हैं, इन तीन, स्वेच्छा, भगवान और असुविधा, ये तीनों होना जरूरी है। भगवान नहीं होंगे तो रेल में भी लोग सफ़र करते हैं ना, चर्चगेट से विरार, वो तपस्या नहीं होती है क्योंकि भगवान के लिए नहीं करते वो, खुद के लिए करते। तो भगवान के लिए अनिच्छा से नहीं, इच्छापूर्वक जानकर वॉलेंटरीली भगवान के लिए असुविधा स्वीकार करना, इसको तपस्या कहते हैं। कलयुग में हम लोग कोई जंगल में, वन में, गुफा में, हिमालय में जाकर तपस्या कोई नहीं कर सकता है, इसमें योग्यता ही नहीं है। अरे 5 मिनट में बैठ सकते हैं, यहाँ वहाँ देखते रहते हैं, इधर उधर 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 क्या है, उधर क्या है, सबका ध्यान बढ़ते रहता है। तो 60,000 साल तक एकाग्र होकर तपस्या करना केवल ड्रीम हो सकता है, ड्रीम। कि विश्वरूप दास हिमालय में 60,000 साल तक एकाग्र होकर बैठे हैं, जो हम सपने देख सकते हैं, लेकिन ये सपना सफल नहीं होगा कभी कलयुग में। तो कलयुग की तपस्या यही है कि अपने आप को भगवान के ऊपर केंद्रित रख के उसके लिए जो भी अनुकूल है, वो सुविधा असुविधा को भी हो, वो स्वीकार करना, यही तपस्या है। और हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी और सब लोग बताते हैं कि कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या क्या है, भगवान के नाम का जप करना। अब बोलेंगे तपस्या कैसी है ये, क्योंकि उसके समय भगवान के नाम के जप करते समय मन को एकाग्र रखना उस नाम पर, यही तपस्या है। यहाँ वहाँ भटकने वाले मन को दोरी लगाकर, लगाम लगाकर एक ही जगह पर भगवान का नाम सुनने के लिए लगाना, इससे बड़ी तपस्या कलयुग में कोई बताई नहीं गई है। और ये तपस्या आप करेंगे तो विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, इन लोगों ने 60,000 साल जो तपस्या किया हिमालय में जाकर, उससे भी अधिक लाभ मिलेगा आपको। केवल मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवान का प्रेम मिलेगा और भक्ति प्राप्त होगी, ऐसे ही तपस्या का परिणाम। तो कुछ कुछ असुविधा स्वीकार करना स्वेच्छा से हमारा कर्तव्य होगा। दूसरा, यात्रा में कैसे करते हैं हम लोग, अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं, प्रसाद में, बस में सीट पकड़ने में, दर्शन करने में, चरणामृत लेने में, प्रसाद लेने में, हाँ जो भी हो रहा है, दूसरों को आगे करते हैं, दूसरों को सुविधा मिले, चाहे हमें असुविधा हो जाए, जो बड़े बूढ़े हैं, जो बालक हैं, जो स्त्रियाएँ हैं, उनको अगर कोई कष्ट होता हो तो उनको आगे करके खुद को पीछे रखना, दूसरों की सुरक्षा पहले सोचना, अपने लिए बाद में सोचना, ये यात्रा का भाव है। हाँ, पिकनिक में सब लोग अपने आप को आगे आगे करते हैं, मुझे आनंद मिलना चाहिए, मैंने पर्स के पैसे खर्च किए हैं, मैंने ये रूम बुक किया है, मैंने ट्रैवलिंग किया है, मुझे आनंद मिलना चाहिए, और सबको पीछे हटाकर स्वार्थ रूप से हम लोग पिकनिक मनाते हैं। लेकिन यात्रा में कैसा होता है, यात्रा में सबको आनंद देने के लिए जितने भी भगवान के भक्त लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, हाँ जानते हुए होंगे, अनजान होंगे, कोई पहचान के होंगे, नहीं पहचान के होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई और किसी तरह से होंगे, सब प्रकार के लोग यहाँ पर एक स्तर पर है। हाँ, यहाँ पर कोई ऊंच और नीच नहीं है, कोई हायर लेवल लोअर लेवल नहीं है, यहाँ पर सब एक लेवल। कौन सी लेवल है वो, भगवान के लिए सब लोग यहाँ पर आए हैं, भगवान की सेवा करने आए हैं, भगवान का नाम लेने आए हैं, भगवान के विषय में सुनने के लिए आए हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए आए हैं, ये इस प्लेटफॉर्म पर हम सब लोग यहाँ पर हैं। इसलिए जितनी भी सारी टोपियाँ हम लोग बॉम्बे में पहनते हैं ना, कोई डायरेक्टर की टोपी पहनता है, कोई डॉक्टर की पहनता है, कोई पुरुष की पहनता है, कोई साउथ इंडियन बोल के पहनता है, कोई नॉर्थ इंडियन बोल के पहनता है, कोई बोलता है मैं कन्नड़ा बोलता हूँ, कोई बोलता है मैं तुलू बोलता हूँ, कोई बोलता है मैं मराठी बोलता हूँ, कोई बोलता है मैं बिहारी बोलता हूँ, हाँ हिंदी बोलता हूँ, कोई बोलता है गुजराती बोलता हूँ, कोई बोलता है मैं ये मार्ग से हूँ, कोई बोलता है वो मार्ग से है, मैं कोई बोलता है मैं पिताजी हूँ, कोई बोलता है माताजी हूँ। ये सारी टोपियों को छोड़ के आना है, मतलब रजोगुण को और तमोगुण को छोड़ के यहाँ पर आना है, केवल सत्वगुण को लेकर चलना है। सत्वगुण का मतलब स्थिरता, एकाग्रता, शांति, दया, सेवा, ये सब सत्वगुण का लक्षण है। ज्ञान, ये भी सत्वगुण का लक्षण है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ये भी सत्वगुण का लक्षण है। तो यात्रा में सब लोगों को सत्वगुण में रहना चाहिए। जो भी सुविधा भगवान की हो, तरफ से मिल रही हो, उसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हमको जानना चाहिए कि जब हम तीर्थ क्षेत्र में आते हैं तो हर एक तीर्थ क्षेत्र का कोई स्वामी होता है, वो उसका घर होता है, और हम उनके घर में आते हैं। भले हमने अपने पैसे से टिकट निकाला होगा, अपने पैसे से रूम बुक किया होगा, लेकिन हम आ रहे हैं उनके घर में। अगर हम किसी मेहमान के घर में जाते हैं तो हम लोग तय नहीं करते हैं हमको कौन से रूम में सोना है और हमको क्या खाना है। हाँ, हम ऑर्डर देते नहीं हमको आप मसाला डोसा बना के खिलाओ। जो भी स्वामी जो है घर का, वो जहाँ आपको रखेगा, जो खिलाएगा, जिस बाथरूम में नहलाएगा, वो आपको स्वीकार करना होगा। यू कैन डिमांड। वैसे उडुपी में हम लोग आए हैं, उसके स्वामी कौन है, उडुपी श्री कृष्णा, उडुपी श्री कृष्ण भगवान की, बहुत सुंदर और बहुत प्यारे भगवान हैं उडुपी के। हाँ, बहुत छोटा सा बाल स्वरूप है उनका, और सब लोग वात्सल्य भाव से उनको देखते हैं, माता पिता के भाव से। तो ऐसे सुंदर क्षेत्र में हम लोग आए हैं, लेकिन बालक रूप में होते हुए ही स्वामी या के हो, तो यहाँ पर उनको क्या क्या आपको खिलाना है, कहाँ कहाँ रखना है, कहाँ कहाँ लेके जाना है, क्या क्या दर्शन कराना है, कौन सी कहानी सुनानी है, ये सब उनके ऊपर तय है। हमने कुछ कुछ तैयारी किया है, लेकिन आप देखेंगे कि हमने कुछ तैयारी किया है उसके बावजूद भी कुछ और भी बातें होंगी जो वो हमसे बुलवाना चाहते हैं, जो उनको कहलवाना है उनके तरफ से हम लोग कहते रहेंगे। यही धाम का महात्म्य है। हम भी अगर यहाँ पर बैठे हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं, ये भी एक सेवा है, आपकी भी एक सेवा है सुनने की, हमारी सेवा है बोलने की। और हमें ये विश्वास है कि जब हम बोलने को बैठते हैं तो गुरु महाराज को वंदन करते हैं, कृष्ण को वंदन करते हैं, ताकि वो हमारी जुबान से बोले। हम तो तैयारी हमारी तरफ से करेंगे, हमारा कर्तव्य हो तैयारी करना, पढ़ना, नोट्स बनाना, सब कुछ हमारी तरफ से, हमारा इनपुट है वो, लेकिन आउटपुट वो निकलेगा जो भगवान की इच्छा होगी। यही भाव यात्रा का। हाँ, तब वो इच्छा मत करो जतन, आपकी इच्छा के अनुसार मैं प्रयत्न करूंगा, यही यात्रा का भाव है। आपकी इच्छा के अनुसार मैं सुविधा असुविधा को स्वीकार करूंगा, जैसे भी आपकी इच्छा होगी, कोई कष्ट होगा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अरे बम्बई में हमारे घर में बहुत सुविधा बना के रखी हमने, वो सब छोड़कर हम लोग यहाँ पर आते हैं। साल में एक बार कोई यात्रा करना चाहिए, साल में एक बार यात्रा इसलिए करना चाहिए कि हम लोग गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ मतलब जिसका घर होता है, और घर में हम लोग बड़े प्रेम से अधिक 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 सुविधाएँ बनाते रहते हैं। हाँ, हर 6 महीने में कुछ नई नई वस्तु लाते हैं, नई सुविधा, नया तकिया, नया गद्दा, नया चद्दर, नई घड़ी, नई मशीन, सब लाते रहते हैं, नया बाथरूम में अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन साल में एक बार इन आसक्तियों को छोड़कर जो जगह हमको पता नहीं है वैसी जगह में जाकर रहते हैं, और रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? भगवान के लिए, भगवान को जानकारी करने के लिए, भगवान के स्थानों को समझने के लिए, भगवान ने कहाँ कहाँ क्या क्या लीला किया है, कितनी विविधतापूर्ण लीला किया है, उसको समझने के लिए हम अपनी सुविधाओं को छोड़कर वहाँ जाते हैं। और कितने भी पैसे खर्च करेंगे तो भी आपको असुविधा असुविधा होगी ही होगी, किसी को दस्त लगेंगे, किसी को खांसी होगी, किसी को और कुछ होगा, तो पैर में मोच आएगी, ये भी एक प्रकार की तपस्या है। ऐसा होते हुए भी हम लोग भगवान को जानने के प्रयास करेंगे। और सब कुछ छोड़ के आने की जरूरत क्या है, क्योंकि जब बम्बई में कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, तो आगे पीछे कुछ प्रोग्राम रहता है अपना। अरे ड्यूटी से आए हुए हैं, वापस कुछ ड्यूटी में जाना है, बीच में 1 घंटे का सत्संग है, तो आगे पीछे मन अटका हुआ है कहीं, हाँ बंधा हुआ है। डॉक्टर हमारे कोई कथा में बैठे हैं तो बोलेंगे क्लिनिक से आ रहा हूँ और बाद में भी मेरा अपॉइंटमेंट है, मेरे पेशेंट का ऑपरेशन करना है, दोनों तरफ से बंधे हुए, बीच में थोड़ा बहुत कथा, और आते वक्त जो जहाँ से आ रहे हैं उसका विचार मन में चल रहा है, और जाने का समय हो गया तो जहाँ जाना है वहाँ का विचार शुरू हो जाता है। इसका मतलब बीच में थोड़ी बहुत कथा हो जाती है, मन यहाँ वहाँ भटकता है, एकाग्रता नहीं होती है। अभी यहाँ पर सब लोग अपना दुकान दरबार दवाखाना हॉस्पिटल सब बंद करके आए हैं, हाँ कोई लोग सपरिवार आए हैं, कोई परिवार को छोड़ के आए हैं, लेकिन फुल टाइम आए हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमको, केवल श्रवण और कीर्तन और भजन करना है, और दर्शन करना है, देखना है अपने इंद्रियों के लिए, दर्शन करना है अपने कान से भगवान के बारे में सुनना है, और मुख से कुछ बोलना है तो जो सुना है उसके बारे में बोलना है, उसके बारे में चर्चा करनी है। मतलब आगे पे जो कोई टेंशन नहीं है कि नौकरी में जाना है, दवाखाने जाना है, कुछ दुकान में जाना है, ओनली गॉड ओनली कृष्णा, केवल भगवान के लिए हम लोग यहाँ पर आए। इसलिए दिन भर क्या करेंगे, कोई समुद्र में हम लोग बोटिंग करने नहीं जाएंगे, समुद्र जाएंगे जरूर, लेकिन दिन भर हम लोग केवल भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान का दर्शन, यही एक बात करेंगे, फुल टाइम एंगेजमेंट, कॉन्सेंट्रेटेड एंगेजमेंट, इसलिए हम लोग यात्रा में आते हैं। तो आप सब लोग इसलिए तैयार हो ना, अगर तैयार हो तो जोर से हरि बोल बोलो। थैंक यू वेरी मच। और एक यात्रा का नियम है, यात्रा तो देखिए यहाँ पर भी सीमेंट की बिल्डिंग है और वहाँ पर भी सीमेंट की बिल्डिंग है, हमारे घर में भी सीमेंट की बिल्डिंग होती है, उधर भी सीमेंट के रास्ते होते हैं, इधर भी बस होती है, उधर भी गाड़ी होती है, वो रिक्शा होती है, सब कुछ सेम है, फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है भगवान का धाम का दर्शन। हाँ, और वो दर्शन जो है उसको कैप्चर करना चाहिए, बाकी सब कुछ सेम है, मतलब क्या है, एवरीथिंग फाइन। लेकिन जब हमारा चित्त जो है वो भगवान के लिए हम लोग एकाग्र करेंगे तो धाम की महिमा प्रकट होती जाएगी आपके लिए, जो जो धाम में आपको जानना चाहिए वो सब प्रकट हो जाएगा। और वो कब प्रकट होगा? जब कथा होगी। और कथा में एक सबसे बड़ी बाधा होती है, बताओ वो कौन सी बाधा होती है? हाँ, जोर से बोलना, जोर से, नींद में बहुत बोलना, जोर से बोलना। कथा में सबसे बड़ा शत्रु है, बैठते ही नींद आने लगती है। कितने लोग सोए हुए हैं, हाथ ऊपर करो। नहीं, सोते वक्त हाथ ऊपर नहीं कर सकते हैं, कोई और दुनिया में होते हैं हम लोग। कितने लोग जग रहे हैं, हाथ ऊपर करो। नहीं, सब लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे, सब लोग सो रहे हैं क्या? तो नींद से बचना चाहिए। जब कथा हो रही है तब धाम के बारे में कुछ ना कुछ महात्म्य प्रकट हो जाएगा, धाम के विषय में कुछ ना कुछ बातें प्रकट होती रहेंगी। आप कितने भी थके होंगे तो आपको बाकी समय आराम करना है, शायद बस में सो जाओ, यहाँ वहाँ की गप्पे मत अड़ाओ, सो जाओ। लेकिन जब कथा हो रही हो तो नींद नहीं लाना है आपको। और नींद आती होगी तो क्या करना है? यस, खड़े हो जाना है। ये भी एक तपस्या है, क्योंकि सब लोग देखेंगे इनको नींद आ रही है, खड़े होने वाले। ये आपको स्वीकार करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, हमको क्या करना है उसके बारे में, भगवान क्या सोचते हैं हमारे बारे में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर नींद से खड़ा हो गया और सब माताएं और पुरुष मुझे देख रहे हैं, अरे इनको नींद आ रही है, इनको नींद आ रही है, नो प्रॉब्लम। उससे भगवान को हम क्या साबित करना चाहते हैं? भगवान, हम आपके विषय में सुनना चाहते हैं, बिना सोए हुए उनको नींद आ रही फिर भी हम जगना चाहते हैं, ये भगवान को हम सिद्ध कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करेगा ना ये बात, लोग हंसेंगे, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए इसे। इसलिए आपको अगर नींद आती हो, हाँ, आपको जगे रहना चाहिए। और आपके बाजू वाला सोता हो तो क्या करना चाहिए? उसको जगाना चाहिए। माता जी, प्रभु जी, आप यात्रा में आए हैं, सोने के लिए नहीं आए हैं, घर में सो सकते हैं, रूम में सो सकते हैं, लेकिन कथा में आए तो जगना चाहिए, क्योंकि उसी समय धाम का महात्म्य कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाकी आप दिन भर कुछ बात करेंगे नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम, कथा के समय जागा जगे रहना चाहिए। इसका और भी कारण है, समझो आप लोग कथा मय करते हुए थोड़ा सा बच्चों को अगर बाहर ले जाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर कथा के समय समझो आप में से 50-60 तक के लोग सो गए तो शायद मैं भी सो सकता हूँ, क्योंकि नींद का प्रभाव ही ऐसा होता है, वो कभी कभी अकेला नहीं सो सकता आदमी, जब बाजू वालों को नींद आती है तो अपने को भी नींद आ जाती है, उसमें मैं सो गया तो क्या हो जाएगा। इसलिए कथाकार को उत्साह देने के लिए भी आपको जगाना जरूरी है। जितने लोग सुनने में उत्सुक होते हैं उतने बोलने में उत्साह आता है। अगर सामने वाले बैठ के सब सो रहे हैं तो मुझे कथा करने में उत्साह बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो बताना है वो स्किप करते जाऊंगा, आगे आगे जाऊंगा, बन जंप करूंगा। तो मेरी इच्छा है कि सब कुछ बताना है मुझे आपको, जितना मुझे पता है और मैं समझता हूँ मुझे पता है वो सब मुझे आपको बताना है। तो मेरी आपको सबको हाथ जोड़ के विनती है कि इन चार ही दिन हैं, 15-20 दिन के हमारे महाराज की यात्रा होती है, उसमें तो बहुत लोग तपस्या करते हैं, क्योंकि दिन रात ट्रैवलिंग करते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी उत्साह रहता है उनका। केवल 4 दिन की यात्रा है, एक्चुअली इन नटशेल 3.5 डेज की यात्रा है। तो कम से कम आप लोगों को इतना तो मन में एकाग्रता और विश्वास और प्रयास करना ही चाहिए कि हमको जगना है। हाँ, और हम लोग आपको रात रात जगाएंगे नहीं, रात को टाइम पे सुलाएंगे, सुबह टाइम पे उठाने का प्रयास करेंगे, और आपको विश्राम अच्छी तरह से मिलेगा। आपको प्रसाद भी उतना ही लेना है जो आपको जगे रहने में मदद करेगा। नहीं तो कुछ लोगों को इडली डोसा मेदू वड़ा बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका एक स्वभाव है, वो खाते ही नींद आने लगती है। आप लोगों का भगवान ने आते आते ही मेदू वड़ा इडली से स्वागत अच्छा किया होगा, है ना? किया कि नहीं किया? मेरा तो हो गया अच्छी तरह स्वागत, लेकिन मुझे जगना है। आप सो सकते हैं लेकिन मुझे जगना है, जगना है। तो ये कुछ यात्रा के हमारे नियम हैं, जिससे आपकी यात्रा सफल होगी। और बीच में समय मिलेगा तो आपने जो सुना है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है, और आपने जो सुना है अगर आपको याद रखना है तो क्या करना चाहिए? हाँ, क्या बोला? लिखना चाहिए, लिखना। इसलिए आपको नोटबुक लेके नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि ये जगह जो है बहुत अद्भुत जगह है। यहाँ पर आमतौर पे हर साल में यात्रा नहीं होती है, कभी कभी यात्रा होती है। हमारे भी पहली बार, हम लोग 5 साल के बाद में 4-5 यात्रा करने के बाद पहली बार उडुपी में आ रहे हैं, तो यहाँ की सब कथाएँ अलग कथाएँ जो आपको कभी सुनी नहीं होगी, शायद सुनी भी होगी लेकिन बहुत लोगों ने इसलिए सुनी होगी। तो आपको मेरी विनती है कि आप लिखिए ज़रूर। अभी जब मैं उडुपी मंदिर के अंदर का आपको बताऊंगा ना, कम से कम 15 से 20 स्थान है उसके अंदर के अंदर ही, और मैं यहाँ से बताऊंगा आपको और वहाँ जाके आपको खुद देखना है उसको, तो आपको याद रखना पड़ेगा ना। तो आप लिखिए, मैं जो बताने जाऊँगा वो सब लिखते रहिए, कथा भी लिखते रहिए। पहले कथा बताने का प्रयास ये इसलिए है कि अगर आप अभी पहले आपको मैं उडुपी मंदिर लेके जाता तो आपको कुछ नहीं समझता कि क्या देखना है, उसकी कथा क्या है। लेकिन आप कथा सुनने के पश्चात वहाँ जाएंगे तो आपको हर चीज़ देखते समय जो ज्ञान आपको हुआ है उसकी वजह से सब कुछ समझ में आएगा कि हम क्या देख रहे हैं, ये उसमें क्या हुआ था, इसमें क्या कथा है, उसमें क्या भाव होना चाहिए, क्या दंडवत करना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए और क्या मांगना चाहिए भगवान से। इसलिए कथा में कान एकदम अपना जो प्राण है वो कान में लाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आपसे हम वादा चाहते हैं कि आपको नींद आएगी, आप लोग खड़े रहिए, हाँ खड़े रहकर सबको उत्साह दीजिए। खड़े रहेंगे तो बाकी लोगों को उत्साह आएगा खड़े रहने के लिए जिनको नींद आ रही है, और बाजुओं को नींद आ रही होगी तो उनको जगा लो, और जो जगा रहे हैं उनके प्रति क्रोध मत करो कि आप क्या समझते हो मैं सो रहा था क्या, मैं चिंतन कर रहा था, मैं ध्यान में था, आप सोते होंगे, मैं आँख बंद करके ध्यान में था, लेकिन आप किस कब किस लोक में जा पहुँचेंगे आपको ध्यान नहीं आएगा। ओके तो इस समय मैं अभी उडुपी क्षेत्र के बारे में कथा करना आरंभ करूँगा। और किसी को कोई प्रश्न है यात्रा के बारे में, कोई किसी को शंका है, बहुत लोग आप अपने परिवार को बच्चों को लेके आते होंगे, हाँ मेरे ख्याल से जो 7-8 साल के ऊपर के बच्चे उनको एक जगह बैठना चाहिए, जैसे हमारे गीता आलमचंदानी है, एक जगह में बैठना चाहिए। 8 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनको खेलने दीजिए, देखिए बाकी सब लोगों को यात्रा का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो कथा है इसके बारे में, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं वहाँ पर एक, जब हम लोग ट्रेन से आ रहे थे तो एक जगह आई मड़गांव, है ना, मड़गांव के आगे एक स्टेशन आया गोकर्णा, आया था क्या, हाँ गोकर्णा। वो गोकर्णा जगह जो है वहाँ से ये क्षेत्र शुरू होता है, परशुराम क्षेत्र कहते हैं इसको। और गोकर्णा की कथा ये है कि यहाँ पर रावण जो है वो गणेश जी की, सॉरी शिव जी का जो लिंग है वो अयोध्या से क्या कहीं से चुरा कर ले जा रहा था रावण के अपनी लंका में, तो श्री गणेश जी उसको परास्त करते हैं और वो आत्मलिंग जो है उसको रावण से लेते हैं और उस जगह पर स्थापन करते हैं गोकर्ण में। तो गोकर्ण में शिव जी का लिंग है और बहुत प्रसिद्ध जगह है, पवित्र जगह है। इस जगह पर खड़े रहकर परशुराम जी ने अपना परशु दक्षिण की ओर फेंका था, उसकी कथा ऐसी है, मैं आपको बताऊंगा कि एक रुचिका मुनि थे, बहुत प्रसिद्ध मुनि थे। मुनि का मतलब होता है जो अपना सिद्धांत प्रकट करता है उसको मुनि कहते हैं। अगर कोई मुनि है और उसका अपना कोई सिद्धांत नहीं है तो उसको मुनि की पदवी नहीं मिल सकती है। तो ऐसे ही रुचिका मुनि थे और बहुत सारे मुनि गृहस्थ हुआ करते हैं। उनकी पत्नी सत्यवती थी, ये राम ये महाभारत वाली सत्यवती नहीं है, ये भीष्मदेव की माता थी, मतलब फॉस्टर मदर सावत्र माई आई। सो उनके पुत्र का नाम है जमदग्नि, ये बताना जरूरी है इसलिए क्योंकि जमदग्नि के माता पिता का नाम सत्यव्रत सत्यवती और रुचिका मुनि है। जमदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ जो राजा रेणु की कन्या थी, और जमदग्नि और रेणुका से श्री परशुराम जी का जन्म हुआ। परशुराम जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, विष्णु के दशावतार में ये छठवें के सातवें हैं, सातवें अवतार। तो परशुराम जी, थोड़ा सा जरा वी हैव टू स्टॉप द चिल्ड्रन फ्रॉम दिस साइड, दे कैन गो ऑन दैट साइड एंड प्ले। तो एक क्षत्रिय थे उस समय जब परशुराम जी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ उनका, जमदग्नि भी ब्राह्मण ऋषि थे, अग्निहोत्र करते थे और क्रोध के लिए भी बहुत मशहूर थे वो जमदग्नि। यानी वे भागवत में उसकी कथा आती है। तो उस समय क्षत्रिय राजा थे कार्तवीर्य अर्जुन। ये अर्जुन अलग है महाभारत के, ये अलग अर्जुन है। कार्तवीर्य अर्जुन क्षत्रिय थे और इसने तपस्या करके 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। और 1000 भुजाएं के साथ साथ तपस्या के बल से उसका यश सब जगह फैल गया था। वो बड़ा सुंदर हो गया था, बड़ा ज्ञानी हो गया था। उसके पास कई सिद्धियां प्राप्त हुई थी उनको, मतलब एकदम हल्का होने की सिद्धि, आकाश में तैरने की सिद्धि, आकाश में उड़ने की सिद्धि, सबसे महान शरीर धारण करके सबसे वजनदार शरीर को निर्माण कर अपने आप को कर सकते हैं, एक लोक को निर्माण कर सकते हैं, सूरज के किरणों पर चलकर सूरज के अंदर जा सकते हैं, ऐसे कई सिद्धियां हैं। वो सब सिद्धियां उसको प्राप्त हुई थी। शरीर का सौंदर्य, बल, क्या होता है सिद्धि प्राप्त होने से? समझो आप में से किसी को सूरज के किरण पर चलने को आता है तो सबसे पहले क्या होगा? यस, अहंकार होगा तुरंत। जानते हो मैं सूरज के किरण पर चलकर सूरज में प्रवेश कर सकता हूं। हाँ, जैसे हम डॉक्टर बनते हैं सबसे पहले क्या होता है? गर्व होता है कि अभी मैं आम जनता से अलग हो गया, अब मैं बोलते हैं क्रीम हो गया, क्रीम, आई एम द क्रीम ऑफ सोसाइटी। हाँ, ये पहले तुरंत जब भी एक पूछ लगती है, MBBS, बाद में MS MD, बाद में DOMS, बाद में, तो जितनी पूछ लंबी होती है उतना गर्व जो है लंबा होता है। और जितना साल प्रैक्टिस किया उसके बाद में उस सालों की वजह से भी गर्व बढ़ जाता है। ये तो क्या है, ये तो एक लोक निर्माण करने की शक्ति प्राप्त हो रही है। 1000 हाथ है उसके, हमारे 2 हाथ है। 1000 हाथ में से 500 धनुष पकड़ के 500 बाण लगाकर एक साथ में मार सकता है वो। इतनी शक्ति थी उसके, उतना कोऑर्डिनेशन भी है। तो बड़ा गर्व था उसको, गर्व के बारे सब जगह घूमता था एकदम, किसी को हराना, किसी को चैलेंज करना, किसी को तुच्छ लेखना, ऐसा सब चलता था उसका। तो एक बार वो जमदग्नि के आश्रम में आया। तो जमदग्नि महाराज के पास एक कामधेनु गाय थी और कामधेनु गाय के पास इतनी शक्ति थी कि कितने भी लाखों लोग आएंगे तो 15 मिनट के अंदर भोजन तैयार। वो एक आइटम नहीं, 50 आइटम, 60 आइटम, 70 आइटम, ऐसा महाभोज तुरंत है वो तो। और यज्ञ के लिए आपको कितना घी चाहिए, कितनी लकड़ी चाहिए, क्या चाहिए आपको, सब कुछ मिलता था। कामधेनु का मतलब है सारे काम, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु। तो वो कामधेनु उसके पास थी, लेकिन राजा जो जमदग्नि महाराज कोई भोग के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, शरीर के आनंद के लिए, तृप्ति के लिए। वो केवल यज्ञ के लिए क्या क्या जरूरी है, साधु जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है, वो खाली कामधेनु से लेते थे। तो एक बार ये कामधेनु के आश्रम में, मतलब जमदग्नि महाराज के आश्रम में कार्तवीर्य अर्जुन आ गए। आगे अकेले नहीं आए, लाखों लोगों को लेके आए, सेनाओं को, सेना को लेके आए। तो कुछ ही मिनटों के अंदर जमदग्नि महाराज ने सबको भर पेट पंच पकवान खिलाए, सबको संतुष्ट कर दिया। पेय से, जल से, भोजन से, मिठाई से, भोजन सब कुछ खिला दिया। तो धन्यवाद देने की भावना निर्माण होने के बदले में इनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अरे मेरे पास इतनी शक्ति है, इतना सिद्धि है, लेकिन इनके पास में वो वस्तु है जो मेरे पास नहीं है, तो वो वस्तु मेरी होनी चाहिए, मैं राजा हूँ और राजा की सब प्रॉपर्टी होती है, तो ये कामधेनु मुझे मिलने चाहिए। तो जमदग्नि बेचारे जंगल में रह रहे हैं, साधु बनकर एकदम तपस्या के भावना में, एकदम गरीब अवस्था में रह रहे हैं, कामधेनु उनके पास में है लेकिन स्वयं के लिए यूज नहीं कर रहे उसको। तो उनसे जाके कामधेनु मांगते हैं। तो जमदग्नि कहते हैं मैं तो साधु हूँ, मुझे घी चाहिए यज्ञ के लिए, तपस्या करने के लिए, जो भी चाहिए साधन वो देती है, ज़रूरी है मेरे लिए। बोले हम लेंगे इसको। बोले आप मत लीजिए, मैं तो साधु हूँ। तो जब जमदग्नि वहाँ गए किसी को बात करने के लिए, तुरंत ये सब लोग जो है कामधेनु को चोरी करके लेके गए। तो परशुराम को ये बात समझ में आई कि कार्तवीर्य अर्जुन ने हमारे पिताजी के द्वारा मना करने के बाद भी कामधेनु को चुरा के ले गए, और कामधेनु को चुरा कर लेते समय कामधेनु को बहुत कष्ट हुआ। तो कामधेनु उसके बछड़े के साथ में वो ले गए उसको। समझे, आपके घर में कोई आएगा और बालक चाहिए बोलेगा, बालक मना करेंगे आप, तो बालक को उठा के लेके जाएगा, तो बालक को दुख होगा कि नहीं होगा? तो बहुत कष्ट प्राप्त हुआ कामधेनु को। जब परशुराम जी लौट के आए तो बहुत क्रोध आया उनको कि पिताजी का अपमान तो किया ही, कामधेनु को भी कष्ट दिया उसने। तो पिताजी को कष्ट को देखते हुए परशुराम जी परशु उठाए, धनुष उठाए, बाण उठाए, ढाल उठाई और चले गए कार्तवीर्य अर्जुन के आश्रम में, मतलब राज्य दरबार में। वहाँ चैलेंज किया उन्होंने और कार्तवीर्य अर्जुन के अंदर, उसके अंदर बहुत भयंकर युद्ध हुआ और उसके 1000 भुजाओं को काट डाला परशुराम जी ने। और फिर कार्तवीर्य अर्जुन का सर उनसे शरीर से अलग करके वध कर दिया उसका। और बड़े प्रेम से रोते हुए कामधेनु को उठाकर वो अपने आश्रम में आए। जब आश्रम में लौट के आए तो पिताजी को अच्छा नहीं लगा, क्रोध आया उनको, अच्छा नहीं लगा उनको। अरे तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, तुम्हें ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, तुम्हें जो भी कुछ है उसके लिए माफ़ करना चाहिए। मेरे पास भी शक्ति थी, मंत्र थे, जब मैं उसको बोलकर कार्तवीर्य अर्जुन को मार सकता था, लेकिन मैंने माफ़ कर दिया उसको, लेकिन तुमने क्रोध किया। ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण है माफ़ी, क्षमा। इसलिए ब्रह्मा जी को ब्रह्मस्थान क्यों प्राप्त हो गया है, क्योंकि वो माफ़ी देने में सबसे एक्सपर्ट है, क्षमाशील है वो। तो फिर पिताजी को अच्छा लगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, बात वहाँ समाप्त हो गई, कामधेनु प्राप्त वापस आ गई। एक बार परशुराम जी जंगल में गए थे लकड़ी तोड़ने के लिए पिताजी के आदेश के अनुसार। तो उस समय जब कार्तवीर्य अर्जुन और परशुराम का युद्ध हुआ था, उस समय उसके 1000 पुत्र थे, वो परशुराम जी का पराक्रम देखकर वहाँ से भाग गए, खड़े नहीं हो पाए उनके सामने, इतना शात्र तेज से और वीर्य से वो उनसे युद्ध कर रहे थे। तो ये बच्चे भाग गए, लेकिन उनके मन में बहुत क्रोध हो गया था कि मेरे पिताजी का इसने वध किया। तो जब परशुराम जी का बल जानते थे, इसलिए परशुराम जी का बदला ले सकते नहीं थे वो। परशुराम जी जंगल में चले गए, तो उस समय ये आए और उन्होंने जो ध्यान में बैठे हुए थे जमद अग्नि महाराज, यज्ञ के सामने, यज्ञ के अग्नि के सामने बिल्कुल मग्न अवस्था में बैठे थे, तो उनका सर काट लिया उन्होंने, वध कर दिया जमद अग्नि का। और जब लौट कर परशुराम जी आए और देखा कि मेरे पिताजी जो भगवान के ध्यान में यज्ञ के सामने बैठे हुए थे, निशस्त्र थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे, असहाय अवस्था में थे, तब कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने आकर मेरे पिताजी का वध किया, ये सोचकर इतना क्रोध आया उनको, वो परशु उठा के चले गए और उन्होंने सारे 1000 पुत्रों का वध कर दिया। और उनका इतना क्रोध आया उनको कि क्षत्रिय लोग ब्राह्मण का महत्व समझते नहीं हैं, जो जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे हैं उनको आकर वध कर रहे हैं, ये कहाँ का शिष्टाचार है, उनकी रक्षा करनी चाहिए उनको, लेकिन उसके बदले में वध कर रहे हैं, तो क्षत्रियों का मैं नाश कर दूंगा। इसलिए परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी की यात्रा की, 21 टाइम्स, और जो जो उनको दिखाई पड़े क्षत्रिय उनका वध कर दिया उन्होंने। क्योंकि उस समय सब क्षत्रिय लोग ऐसे अपने स्थान से पदच्युत नहीं हुए थे, लेकिन बहुत सारे क्षत्रिय जो है वो अपने धर्म का पालन करने में असफल थे, गलत बर्ताव करते थे। कार्तवीर्य अर्जुन सबसे बड़ा क्षत्रिय था उस समय राजा, लेकिन एक नियम था उनका कि जो हम अटैक करने जाएंगे और जो क्षत्रिय यज्ञ में बैठा होगा उसका वध नहीं होगा, जो व्यक्ति शादी में बैठा होगा, शादी कर रहा होगा, उसका वध नहीं होगा, और जो व्यक्ति स्त्रियों से सराउंडेड होगा, मतलब स्त्रियों से आवरण होगा उसका, स्त्रियां उसके आसपास बैठी होंगी, उसका वध नहीं करेंगे। इसलिए जब भी ये आक्रमण करने को आते थे, एक बार, दो बार, तीन बार, 15वें बार जब आ रहे थे, तो खबर तो पहुंचती थी कि आ रहे हैं परशुराम जी, तो कुछ लोग युद्ध करते थे क्षत्रिय तेज के अनुसार, लेकिन कुछ लोग डर के मारे यज्ञ को बैठे थे तुरंत, फट जी महाराज, पुरुष महाराज आ जाओ तुरंत, पुरोहित जी आ जाओ तुरंत, यज्ञ करो, हमें बिठाओ पत्नी को लेकर, तो वो बच जाते थे। और कुछ लोग क्या करते, एक राजा था उसका नाम था नारी कवच, उसकी बहुत पत्नियां थी, जैसे ही परशुराम जी का होता था ना ऐलान कि आ रहे हैं, तो सारी पत्नियों को लेकर बीच में बैठता था, नारी कवचा, हाँ, स्त्री का कवच लेकर बैठता था। और बहुत सारे लोग नई नई शादी करते थे, 1 हो गया, 2, 50, 51, 1000, एक फिर भी 1002 ही शादी चल रही है, तो इसलिए बहुत सारे बच गए। लेकिन 21 बार क्षत्रियों का संहार किया उन्होंने, सारी पृथ्वी को जीत लिया उन्होंने। और सब संहार किया तो ऐसा कहते हैं कि कार्तवीर्य अर्जुन और उसके पुत्रों के ही रक्त से उन्होंने एक नदी बनाई, इतनी खून बहाया उन्होंने। और जब बाकी युद्ध किया उन्होंने, तो उसके बाद क्या हुआ, 7 कुंड बनाए खून के, सीमांत पंचक जो कुरुक्षेत्र की जगह है, वहाँ पर ब्रह्म सरोवर है, ये सब पहले क्षत्रियों के रक्त से बने हुए कुंड थे, इतना खून बहाया उन्होंने, बहुत भयंकर कुंड बने 7 प्रकार के। फिर वो शांत हो गए, फिर भी उन्होंने, भगवान के अवतार हैं वो, तो उन्होंने कहा कि एक उदाहरण के तौर पर मुझे इसका पश्चाताप भी करना चाहिए। तो उन्होंने यज्ञ करवाए और सारी भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी, उन्होंने पूरी पृथ्वी की भूमि दान कर दी। अब उन्होंने सोचा कि मुझे भी रहना है, तो मैं दान की हुई भूमि पर नहीं रहूँगा, तो इसलिए उन्होंने गोकर्ण में आकर परशु फेंका। अभी हमारी कथा वहाँ पहुँच गई दोबारा। तो ये सब भूमि पूरी दान करने के बाद में खुद के लिए कुछ जगह चाहिए, इसलिए उन्होंने गोकर्ण में रहकर दक्षिण की ओर अपना मुंह करते हुए दक्षिण की ओर कन्याकुमारी तक अपना परशु फेंका, और वरुण देव यानी कि समुद्र के स्वामी जो हैं देवता, उनसे भूमि क्लेम कर ली। हमारा है ना बांद्रा रिक्लेमेशन, मतलब क्या, समुद्र से हम भूमि ले लेते हैं और अपना बिल्डिंग बनाते हैं, वहाँ पर भराव डालते हैं उसके अंदर। तो ये भराव डालने की ज़रूरत नहीं है, ये भराव डालने से सुनामी होता है, प्रलय होता है आगे जाकर, बहुत मनुष्य हानि होती है, वित्त हानि होती है। लेकिन ये जब हृदय से परशुराम जी को इच्छा के अनुसार वरुण देव ने समुद्र की, जैसे कहते हैं कि कम से कम 1000 किलोमीटर लंबी और कम से कम 100-150 किलोमीटर चौड़ी जमीन जो है, बड़ा क्षेत्र निर्माण हो गया, उसका नाम है परशुराम क्षेत्र। उसकी भी आगे कथा है। उन्होंने 10 ब्राह्मणों को बुलाया जिनके नाम से गोत्र शुरू होते हैं, जैसे भारद्वाज, कौंडिन्य, कंस, ऐसे गोत्र हैं हमारे ब्राह्मण लोगों के भी कास्ट में से गोत्र होते हैं। तो सब ब्राह्मणों को बुलाया उन्होंने और उनको भी भूमि दान कर दी उसमें से बहुत सारी, और स्वयं महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करने बैठ गए। आज भी परशुराम जी हैं महेंद्र पर्वत पर हैं। महेंद्र पर्वत अभी हमारे दृष्टि से ओझल है, लेकिन परशुराम जी हैं और वो अगले मन्वंतर में सप्तऋषि में से एक बनने वाले हैं। बीच में एक कथा ना भूल गया आपको मैं, कि सभी क्षत्रियों को मार कर जब लौट कर आए वो, तो उन्होंने अपना पिताजी का सर जो है, जो वो लोग चोरी करके ले गए थे, काट के सर ही ले गए थे उनका, वो जमदग्नि जी का, वो सर लेके आए और दोबारा उसने शरीर को जोड़ा जमदग्नि को, और बहुत बड़े यज्ञ किए उन्होंने और पुनः अपने पिताजी को प्राण प्रदान किए उन्होंने, पुनः जीवित हो गए जमदग्नि जी। और जमदग्नि उनके आशीर्वाद से, पिताजी मतलब अपने बालक के आशीर्वाद से, उसकी तपस्या से, उसके यज्ञ से, उसके त्याग से जमदग्नि जी जीवित हो गए और वो अगले मनु के समय पर सप्तऋषि में से एक बन जाएंगे। अभी बने नहीं हैं, अभी ये मनमंत्र खत्म होगा, उसके बाद के मनमंत्र में वो सप्तऋषि में से एक बन जाएंगे जमदग्नि जी, और परशुराम जी भी आगे बनेंगे सप्तऋषि में से एक, ऐसा शास्त्र में भागवत में वर्णन आता है। तो वो 10 ऋषि जो थे उन्होंने भूमि बांट दी बहुत सारी उसमें से, और 10 ऋषियों को बताया कि आप लोग यहाँ पर रहो। उन्होंने वरदान लिया, आपने देखा होगा ना, अभी सुबह सुबह तो बहुत जल्दी आप लोग मड़गांव से पहुँच गए होंगे, रात को ही मड़गांव आ गया होगा, लेकिन जितना तक आपने देखा होगा सब जगह हरियाली हरियाली देखी होगी, है ना, इतनी हरियाली कि लगेगा बारिश का मौसम है क्या, ऐसा लगेगा। लेकिन 12 साल यहाँ पर ऐसी हरियाली रहती है जैसे लगता है कि बारिश का ही मौसम चल रहा है, और हर 15 मिनट में ट्रेन में एक नदी आती है, देखा ना आपने, हर इतनी नदी इतनी बड़ी चौड़ी होती है, उसमें लाखों करोड़ों नारियल के झाड़ होते हैं किनारे में, और सब जगह चावल और कोकोनट सब जगह भरे हुए हैं, केले के झाड़ पेड़ सबसे, इतना समृद्धि यहाँ पर है। तो परशुराम का वरदान है, परशुराम ने कहा था उन 10 ऋषियों को, आप यहाँ लोग आराम से रहिए, यहाँ पर प्रकृति की तरफ से कोई कमी नहीं होगी, यहाँ पर फल फूल इत्यादि धान्य जल नदियाँ सब कुछ भरभराहट रहेगी, यहाँ पर कभी भी समृद्धि में कमी नहीं आएगी। कभी भी कुछ यहाँ पर कभी सुना आपने, केरला में अकाल पड़ गया, उड़पी में अकाल पड़ गया, कभी सुना है क्या, इतनी वर्षा होती है, हाँ अप्रैल के एंड में शुरू हो जाती है और अक्टूबर के एंड तक चलती है, इतनी घनघोर वर्षा होती है, और सब जो वर्षा वाले धान्य यहाँ पर आते रहते हैं और कोई भी कमी नहीं है, लोग बड़े शांत रहते हैं यहाँ पर। शहरों में रजोगुण तमोगुण फैलता है, लेकिन जितने गांव हैं यहाँ पर वो सब जगह पर लोग शांति से रहते हैं, बिल्कुल बहुत जगह है, पर्वत है, लाल मट्टी है, धान्य आराम से लोग रहते हैं यहाँ पर। तो उनको कहा था कि आप लोग आराम से रहिए, भजन कीजिए, और जब कोई संकट आएगा तो मैं आपको मंत्र दूंगा, वो मंत्र आप उच्चारण कीजिए, एकत्र होकर उच्चारण कीजिए, फिर मैं प्रकट हो जाऊँगा, आपकी समस्या का समाधान कर दूँगा, डोंट वरी, जस्ट लीव हैप्पीली। तो सब लोग रहने लगे आराम से, ऋषि लोग भजन करते हुए, और कुछ समस्या नहीं आई। बहुत दिन बीते, उनका भजन भी ठीक चल रहा था, क्योंकि कोई कमी नहीं थी, कोई चिंता की बात नहीं, कोई अकाल नहीं पड़ रहा है, कोई राक्षस नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, एकदम अनुकूल परिस्थिति है भजन करने के लिए। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न आया, अरे उस मंत्र का क्या हुआ, तो मंत्र में क्या शक्ति है, देखना चाहिए। लेकिन कहा गया था कि संकट आएगा तो ही एकत्र होकर मंत्र उच्चारण करना है, लेकिन संकट तो आया नहीं है, फिर भी कुतूहल, जैसे कुंती के मन में कुतूहल था ना, अरे 5 मंत्र प्राप्त हुए हैं, क्या कौन देवता आएगी, देवता आएगा, तो एक मंत्र बोल दिया और सूर्यदेव को आह्वान कर दिया, तो आश्चर्य क्या हुआ, सूर्यदेव आए और पुत्र देकर चले गए। तब उसको यकीन हुआ कि मंत्र कोई मजाक नहीं है, ये सच मंत्र है। तो उन्होंने क्या किया, सब लोग आके बैठे, मंत्र उच्चारण किया, तो अचानक परशुराम जी प्रकट हो गए, सब डर गए, अरे मंत्र तो सच है, जिनको नींद आ रही है वो जग जाओ, परशुराम जी आ गए हैं, इनको लेकर सब लोग डर जाते हैं। तो अभी क्या करें, वो पूछ रहे हैं क्या समस्या है बताओ, वत्सों क्या समस्या है, तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, अपने सर को झुका रहे हैं, तो महाराज जी कोई समस्या नहीं है, तो फिर हमने को क्यों पुकारा आपने, नहीं हम लोग वो मंत्र का जो पावर है उसको टेस्ट कर रहे थे। बोले क्या, मैंने आपको मंत्र दिया उसको आप परीक्षा कर रहे हैं, उस कसौटी कर रहे हैं, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप सब लोग की एक ही जो है, एकता जो है वो नष्ट हो जाएगी और भजन भी नष्ट हो जाएगा। एक साधु के लिए एकता और भजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हु केयर्स, एकता, हम लोग अकेले रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, लेकिन साधुओं के लिए सत्संग के लिए समाज जरूरी होता है, एकांतवास नहीं कर सकते वो, सत्संग होना जरूरी है। तो बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत रोए, बहुत माफ़ी मांगी कि हमने गलती किया, हम लोग बच्चों की तरह ऐसे कुतूहल में आकर आपका मंत्र जब उच्चारण किया, माफ़ कर दीजिए। तो उनके भाव को देख कर फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमको आपको उत्साह देते हैं, उत्साह का मतलब कंसेशन, हाँ आप लोग अगले आने वाले मौसम में जब वर्षा होगी तब आने वाले नए नए फल फूल और धान्य से और फल फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करना, 10 दिन पूरी तरह से पूजा करने के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, तब आप इस शाप से मुक्त हो जाएंगे। तो वही उत्सव है ओणम का, वो 10 दिन का उत्सव जो है उसको ओणम उत्सव कहते हैं, और 10 दिन नया चावल, नया धान्य, नया जो भी कोकोनट और जो भी फल फूल है उन सबसे भरभराहट से भगवान की सेवा हो जाती है, हाँ, और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये ओणम का उत्सव है। तो ये सब परशुराम क्षेत्र में हुआ है, और आज भी आप देख सकते हैं यहाँ से आगे आप कन्याकुमारी से जाएंगे तो हर 15 मिनट में एक नदी आएगी समुद्र की तरह, इतनी बड़ी, हजारों और करोड़ों उसमें कोकोनट के वृक्ष होंगे। जब कोचीन में आप हवाई जहाज से उतरेंगे तो आपको करोड़ों और अबजों अबजों झाड़ मिलेंगे कोकोनट के, इतना समृद्धि है यहाँ पर, इतनी हरियाली है। तो ये परशुराम क्षेत्र है, और ये परशुराम क्षेत्र में हम लोग अभी आए हुए हैं, क्योंकि उडुपी क्षेत्र जो है परशुराम क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर परशुराम जी का वरदान प्राप्त है। तो सबसे पहले आप हाथ जोड़िए और मन से, हृदय से, भावना से परशुराम जी को वंदन कीजिए। परशुराम जी भगवान के शक्तिविश अवतार हैं, उन्हीं की कृपा से यहाँ पर भजन होता है। और आप देखेंगे साउथ इंडिया में सबसे अधिक मंदिर हैं, हर एक गली गली में एक मंदिर होता है, और साउथ इंडिया में कोई भी आज भी जो कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, भजन कांड है, जो भी होता है बहुत अच्छी तरह से होता है। और यहाँ पर इतने भ्रष्ट लोग नहीं जितने में नॉर्थ में हैं, नॉर्थ के मंदिरों में सब पंडा लोगों को लूटते हैं, उनको चीटिंग करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, उनको शाप देते हैं और पैसा मांगते रहते हैं, आपको दर्शन करने देते नहीं हैं, बहुत परेशान कर देते हैं। यहाँ पर आपको कोई तंग नहीं करेगा, आप तिरुपति जाओ, श्रीरंगम जाओ, उडुपी जाओ, कहीं भी मैंगलोर में जाओ, किसी भी देवी के मंदिर में जाओ, देवता के मंदिर में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, आपका स्वागत करेंगे और आपको गाइड करेंगे, कोई डोनेशन नहीं मांगेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, कोई चीट नहीं करेगा। ये परशुराम जी का वरदान है, इसलिए हम उनके बहुत ऋणी हैं। और यहाँ के मंदिर बहुत भव्य भव्य मंदिर हैं, और हर एक मंदिर के अंदर बहुत कला कुसर है, बहुत स्कल्पचर है, बहुत सारा मूर्ति काम है, बहुत सारा कोरे काम है, पत्थर में, लकड़ी में, हर जगह पर बहुत सुंदर सुंदर भव्य मंदिर बनाए गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो मीनाक्षी मंदिर, वो साउथ इंडिया में है। तो इस तरह से भगवान का भजन जो है यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से होता है, बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पर व्यवस्था है, और आज भी अच्छे नियमों से यहाँ पर मंदिरों की सेवा हो रही है। तो ये हुई परशुराम क्षेत्र की कथा। आगे जी कथा जो है उडुपी क्षेत्र की, वो ऐसी है। उडुपी का मतलब है उडुपी, उडु का मतलब है स्टार्स यानी कि तारे, सितारे, और पी का मतलब है स्वामी, तो चंद्र के ऊपर इसका नाम दिया गया है। उडुपी यानी कि चंद्र, सभी सितारों का स्वामी, उडुपी, तो ये कैसे हो गया, इसका नाम कैसे आ गया? इसका नाम इसलिए आ गया कि दक्ष राजा थे, जैसे भगवान ब्रह्मा जी जो हैं वो जब निर्माण करते हैं सृष्टि का निर्माण, तो वो कई प्रजापतियों को जन्म देते हैं, दक्ष प्रजापति, कश्यप प्रजापति, बहुत सारे ऋषि, सप्त ऋषि, ये सब प्रजापति हैं। प्रजापति मतलब प्रजाओं को निर्माण करते हैं, प्रजा का निर्माण करते हैं, इन्हीं में से सब योनियों का जन्म हो गया है। कद्रु से सब सर्प निर्माण हो गए हैं, और दिति अदिति से राक्षस और देवता निर्माण हो गए हैं। सबके पिताजी कश्यप मुनि हैं। दक्ष प्रजापति भी ऐसे ही प्रजापति हैं, जो सती यानी कि पिछले जन्म में पार्वती जी दक्ष की पुत्री थी, सती जिनका नाम था, कि सती ने किसी लीला के अंदर, कथा के अंदर अपने आप को जला लिया पूरा, क्योंकि पति पत्नी का, पति के, पत्नी के सामने पति महादेव जी का अपमान किया गया, इसलिए उसने सोचा कि ये शरीर जिस पिताजी के द्वारा प्राप्त हो गया है उसने ही मेरे पति का अपमान किया है, इसलिए मैं शरीर को नष्ट कर दूंगी, इसको उनका शरीर प्राप्त हुआ है उनकी तरफ से, इसलिए मैं उसको जलाकर भस्म कर दूंगी। इसलिए वो मंत्राग्नि से अपने आप को भस्म कर देती है, और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती, पर्वत की पुत्री पार्वती, ऐसे उनका जन्म होता है। लेकिन वो दक्ष राजा जो थे सती के पिता, उनका एक बार चंद्र देवता ने अपमान किया, अपराध किया और अपमान भी किया, तो चंद्र देवता ने, नर्तकी माता जी का स्वागत है, सब लोग बोलेंगे हरी बोल, जोर से बोलिए हरी बोल, हरी बोल। हमारी यात्रा में श्रील प्रभुपाद जी की शिष्या नर्तकी माता जी का स्वागत है, और आपकी कृपा से और प्रार्थना से मैं कथा करूँगा, प्लीज ब्लेस मी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। तो चंद्र भगवान, चंद्र देवता को शाप दिया, और चंद्र देवता को राजयक्ष्मा रोग हो गया। राजयक्ष्मा मतलब आजकल का टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, राजयक्ष्मा कहते हैं उसको। तो चंद्र ने तपस्या करना आरंभ किया इस जगह पर आकर, और चंद्र ने तपस्या किसके लिए किया? शिवजी महाराज के लिए, शंकर भगवान के लिए। और यहाँ ही तपस्या करके महेश्वर भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया, और फिर महेश्वर भगवान ने उनको इस रोग से मुक्त कर दिया। इसलिए उन शंकर भगवान का नाम चंद्रमौलेश्वर है। चंद्रमौलेश्वर ने कि चंद्र भगवान को, चंद्र देवता को जिन्होंने शाप से मुक्त कर दिया, तो वो चंद्रमौलेश्वर का मंदिर यहाँ पर है, और इसीलिए इस क्षेत्र का नाम उडुपी पड़ा है। उसके आगे कथा ऐसी आती है, जब परशुराम जी ने सब कुछ स्थापन किया तो उसके एक परम भक्त थे राम भोज राजा। तो राम भोज राजा ने इस स्थान के राजा बन गए वो, और परशुराम ने कहा था कि यहाँ पर अग्निहोत्र करो, यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो। तो अश्वमेध यज्ञ के लिए बहुत लंबी दिशाओं तक भूमि को नांगर चलाना पड़ता है, फिर अश्वमेध यज्ञ की तैयारी होती है, कई हेक्टर के ऊपर यज्ञ कुंड बनते हैं। तो जब वो राम भोज राजा नांगर चला रहा था भूमि के अंदर, तो उसके अंदर एक सांप अटक गया और वो मर गया। वास्तुस्थिति ये थी कि वो सांप राक्षस था, और उसका वध होना था, हो गया, फिर भी सांप का वध हो गया, इसलिए परशुराम जी ने कहा कि तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसलिए क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा? चंद्रमौलेश्वर जहाँ पर मंदिर है उसके आगे आपको एक चांदी का स्थान बनाना पड़ेगा, जैसे इसको कहते हैं इंग्लिश में सिल्वर पेडेस्टल, चांदी का आसन बनाना पड़ेगा, रुपया यानी कि चांदी, और उस पर फिर आगे जाकर मैं बताऊंगा क्या होने वाला है। तो परशुराम के आदेश के अनुसार राजा राम भोज ने वहाँ पर चांदी का आसन बनाया, बहुत भव्य बनाया आसन, इसका नाम क्या है? रौप्य पीठ, रुपये मनी सोना, स्वर्ण, रौप्य मतलब चांदी, तो रौप्य पीठ तैयार किया गया। और उसके बाद में चार दिशाओं में नागों को स्थान दिया गया, जो तो चार दिशाओं में मुख करके नाग स्थापन किए गए, फिर उनकी पूजा की गई, और परशुराम जी ने कहा कि तुम्हारे वजन करके, इसको यहाँ पर कहते हैं तुलाभार, तुलाभार का मतलब है कि एक जगह पर एक पलड़े में व्यक्ति बैठता है और दूसरी जगह पर चावल, गेहूं, नारियल और कोई चांदी, कोई सोना रखते हैं, उसको दान कर देते हैं अपने वजन के वस्तुओं को। तो परशुराम जी ने कहा कि आपका स्वर्ण तुलाभार करना होगा, और जो स्वर्ण आपके वजन का होगा वो आपको दान करना होगा। तो उसने वो भी किया, इसलिए उसका नाम है इस जगह का तौलिया पीठ, जहाँ पर तुला भार किया गया, इसलिए उसका नाम तौलिया पीठ भी रखा गया। और परशुराम जी ने वरदान दिया कि ये स्थान जो है आपके यज्ञ की वजह से बहुत सुंदर तीर्थ स्थान बन जाएगा। ये सब प्रायश्चित करके, तुलाभार करके, स्वर्ण बाट के उसने अपना अश्वमेध यज्ञ जो है वो पूरा किया। उसके बाद में संपन्न हो गया वो। और परशुराम जी उस रौप्य पीठ पर स्वयं प्रकट हो गए और पद्मनाभ के रूप में प्रकट हो गए, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है ना वो, तो पद्मनाभ जी के रूप में वहां पर प्रकट हो गए रौप्य पीठ के ऊपर। तो ये बहुत सुंदर कथा है कि भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण यहाँ पर आए और उन्होंने नारायण भगवान को पुत्र प्राप्ति के लिए भजन किया इसी जगह पर। नारायण भगवान प्रसन्न हो गए, उनका नाम आदिशेष भी है, जो आदिशेष नाग पर विश्राम कर रहे हैं नारायण भगवान, उनकी पूजा करने के बाद प्रसन्न हो गए वो। और उन्होंने ब्राह्मण को वरदान दिया कि आप चंद्रमौलेश्वर जहाँ विराजमान हैं, जहाँ पर अग्निहोत्र अश्वमेध यज्ञ हुआ था, वहाँ पर रौप्य पीठ है, वहाँ पर आप जाओ और रौप्य पीठ के चारों दिशा में जो नाग है उनको आप दूध दे दो, उसके बाद मैं वहाँ पर प्रकट हो जाऊँगा। यानी कि वही भगवान परशुराम जी का अवतार जिन्होंने लिया है वो कह रहे हैं मैं वहाँ प्रकट हो जाऊँगा और लिंग के रूप में प्रकट हो जाऊँगा। लिंग केवल शिव जी का होता है, लेकिन यह अद्भुत जगह है, यहाँ पर भगवान विष्णु लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तो परशुराम जी ने कहा कि जब मैं अवतार लिया तो मैंने शिव जी महाराज को, शंकर भगवान को बहुत सारे शस्त्र अस्त्र दिए और उनको वरदान दिया, मैंने मेरी सारी शक्तियाँ भी उनको अर्पण की। तो महारुद्र शंकर भगवान ने मुझे भी कुछ दिया, क्या दिया उन्होंने, मुझे धनुर्विद्या सिखाई। अभी ये सब लीला है भगवान की, भगवान को किसी से धनुर्विद्या सीखने की जरूरत नहीं है, भगवान सब कलाओं में निपुण हैं। लेकिन प्रेम के कारण, लीला करने के हेतु भगवान परशुराम ने रुद्र से धनुर्विद्या सीखी और महारुद्र ने कहा कि मैंने आपको धनुर्विद्या सिखाई है, इसलिए मेरी इच्छा से आप यहाँ पर लिंग के रूप में प्रकट हो जाइए। जो स्वयं लिंग के रूप में आते हैं महारुद्र शंकर भगवान, उन्होंने भगवान से भी वरदान मांगा कि आप आइए और लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो जाइए। तो वो जो लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं उनका नाम है अनंतेश्वर, अनंतासन, अनंत आसन या अनंत शयना, अनंत यानी कि नाग, जिनकी शैया नाग की है उनको अनंत शयन कहते हैं, जिनकी शैया आसन जिनका अनंत है उनको अनंत आसन कहते हैं, और जो जिनके नाभि से पद्म निकलता है इसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है, इसलिए उनका नाम पद्मनाभ भी है। तो ऐसे अनंतेश्वर, अनंत आसन, अनंत पद्मनाभ जी का वहाँ पर निर्माण हुआ, जन्म हुआ, और वही चंद्रमौलेश्वर के मंदिर के सामने आज भी विराजमान है। तो तीन स्थान हो गए, एक बताया चंद्रमौलेश्वर, परशुराम क्षेत्र, फिर अभी अनंतेश्वर का वर्णन भी आपको हमने किया। ये सब मंदिर यहाँ पर केवल 5 मिनट अंतर पे हैं, जब हम दर्शन करने जाएंगे तो आपको बताऊँगा। तो क्योंकि चंद्रमौलेश्वर महाराज की कृपा से उन्होंने इच्छा प्रकट की, इसलिए परशुराम जी यहाँ पर अनंत पद्मनाभ के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए पहले यहाँ पर जाके दर्शन करना है चंद्रमौलेश्वर का, शंकर भगवान का, और उसके आगे जाकर करना है अनंतेश्वर का, और उसके आगे जाकर करना है उडुपी श्री कृष्ण का। ये यहाँ पर सीक्वेंस है, ठीक है। आगे कथा ऐसे आती है कि रामभोज राजा के बाद उनका पुत्र कदंब राजा बन गया। कदंब जो है उसके बाद में वसु राजा बन गया। वसु ने सुशीला के साथ विवाह किया और वसु की कन्या का नाम सुशीला है, जिसका विवाह हेमांगद राजा से हुआ। और हेमांगद को और सुशीला को, जो वसु के कन्या और जमाई थे, उनको पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ मयूर वर्मा। और मयूर वर्मा जो है आगे जाकर रौप्य पीठ क्षेत्र के राजा बन गए। ये रौप्य पीठ जो है यहाँ पर है, लेकिन उसके आसपास जो राज्य है पूरा, वो राज्य के राजा मयूर वर्मा बने। और मयूर वर्मा के पास एक बार कश्यप मुनि आए, कश्यप मुनि प्रजापति है, मैंने बताया आपको। तो उन्होंने कहा आप हमारे पास रहिए, यहाँ पर विराजमान रहिए, हमारी सेवा लीजिए। हर राजा ब्राह्मण की सेवा करना चाहता है, उनका आशीर्वाद चाहता है राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि यहाँ पर कोई अच्छे ब्राह्मण नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, अगर नहीं है तो मैं लाऊँगा ब्राह्मणों को। तो वो अहिच्छत्र नाम के जगह पर गए उत्तर दिशा में कश्यप मुनि के आदेश के अनुसार, और वहाँ से ब्राह्मणों को विनती कर करके बताया कि हमारे राज्य में आके बसिए आप, हमारे लिए आप यहाँ पर रहिए, हम आपके लिए हर व्यवस्था करेंगे, हर धन धान्य फल फूल आपको अर्पण करेंगे और आपकी सेवा करेंगे, आप कोई कमी नहीं होगी। अग्निहोत्र आप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अर्चना कीजिए, यज्ञ कीजिए, यजन याजन पठन पाठन कीजिए, लेकिन हमारे पास रहिए। तो सब ब्राह्मण लोग जो है अहिच्छत्र से आकर रौप्य पीठ में रहने लगते हैं, और उसमें कई जाति के ब्राह्मण थे। उसमें एक जाति थी शिवल्ली ब्राह्मण, जो शिव भगवान की पूजा करते थे लेकिन भगवान विष्णु पर विश्वास करते थे। शैवाइट नहीं थे वो भगवान विष्णु वैष्णव थे वो, लेकिन फिर भी शिवजी महाराज का परम वैष्णव के रूप में भजन किया करते थे। उस परिवार में यहाँ से 32 किलोमीटर दूर कई गांव हैं, वो सब जगह पर वो बस गए, और उसमें से एक मध्यगेह परिवार के एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था नारायण भट्ट। परिवार का नाम क्या है? मध्यगेह परिवार। और मध्यगेह परिवार के अंदर नारायण भट्ट का जन्म हुआ, उनका विवाह वेदवती से हुआ, और वेदवती को एक कन्या और दो पुत्र हुए, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर एक गांव है उसका नाम है कुड़ावली, जिसको आज कहते हैं कड़पाड़ी, कुड़ावेड़ी नाम था उसका उस समय, लेकिन आज वो अपभ्रंश होकर उसको कड़पाड़ी कहते हैं। तो वहाँ पर उनका दो कन्या और दो पुत्र और एक कन्या हुई, किसी कारणवश दो पुत्रों का देहांत हो गया, दो पुत्र मर गए, इसलिए अपनी एक कन्या को लेकर वो पाजका क्षेत्र नाम की जगह पर गए, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। पाजका क्षेत्र, PAJAK, हाँ। और वहाँ पर उन्होंने रहकर वहाँ से वो रोज अनंतेश्वर पैदल आते थे, 12 किलोमीटर पति पत्नी नंगे पैर दोनों तपस्या के रूप में केवल दूध पीते हुए, केवल दूध आहार लेते हुए 12 साल तक वो पैदल आए अनंतेश्वर, और यहाँ के अनंत पद्मनाभ की उन्होंने सेवा की, दूध चढ़ाना, भजन करना, पूजन करना, चिंतन करना, ध्यान करना, जप करना, तप करना, और अनंतेश्वर की 12 साल तपस्या पूर्वक पूजा करने के पश्चात किसका जन्म हुआ? मध्वाचार्य का जन्म हुआ। ये अनंतेश्वर की महिमा कहानी है, महात्म्य है कि अनंतेश्वर की कृपा से उनको पुत्र प्राप्ति हुई दो पुत्रों के मरने के बाद में, और उनका पहला नाम था वासुदेव। फिर जैसे वो बड़े बढ़ते गए, फिर उनका पूर्ण प्रज्ञ भी नाम हो गया, आनंद तीर्थ भी नाम हो गया, सर्वज्ञ तीर्थ भी नाम हो गया, फिर आगे जाकर उनका नाम मध्वाचार्य हो गया। उसकी कहानी हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि हम कल सब लोग उनके जन्म स्थान पाजका क्षेत्र में जाने वाले हैं। परशुराम जी की और भी कहानी है। जब परशुराम जी यहाँ पर उन्होंने सब कुछ ऋषियों को जमीन दान दे दिया, तो पाजका क्षेत्र में एक पर्वत है, उसका नाम है कुंजारगिरी, बहुत सुंदर पर्वत है। उन्होंने वहाँ पर योगमाया देवी, कुंजारा देवी को स्थापन किया, और कुंजारा देवी का जो पर्वत है छोटा सा, उसके तल में मध्वाचार्य का जन्म हुआ। और वो सब पर्वतमय स्थान है, सब जगह पत्थर के पर्वत बने हुए हैं। उन पत्थर के पर्वतों में परशुराम जी महाराज ने चार कुंड निर्माण किए, एक है बाण तीर्थ, एक है धनुष तीर्थ, एक है गदा तीर्थ और एक है परशु तीर्थ। वो चारों तीर्थ और कुंजारगिरी हम आपको दिखाएंगे, कल हम जाने वाले वहाँ पर। और उन्होंने वरदान दिया कि इन चारों कुंडों में तीर्थों में जो स्नान करेगा वो दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। तो वो चारों कुंडों का दर्शन हम कल करेंगे। सब लोग जागरूक रहिए उत्साह से। तो अभी हम उडुपी कृष्ण की कथा करेंगे, हाँ, इसके पहले 2 मिनट कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा।